अभी हम लोगों का श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के त्रिभाव का उत्सव चल रहा था, इसलिए गुरु और शिष्य वो लोग थे। अब देखो सब शिष्य का लक्षण क्या है। सब शिष्य के लिए देखना पड़ेगा रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र, और सदगुरु का लक्षण देखने पड़ेगा लोकनाथ दास गोस्वामी। नरोत्तम ठाकुर जी बहुत उत्तम कुल में पैदा हुए थे, इसलिए सप्त शिष्य का उत्तम कुल में पैदा होना जरूरी है। चाहे वो मुसलमान हो, अन्य जाति हो, चाहे चमार धोबी भी हो, कोई बात नहीं, किंतु उसमें भी उत्तम कुल माने माता पिता उसके अच्छे हों, संस्कार वाले हों। संस्कार माने कौन संस्कार, माने उच्च चरित्र का होना चाहिए। जिनका वंश वैसा ठीक नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे देखे जाते हैं, इसलिए नरोत्तम ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, जितने भी आचार्य देखते हो जो शिष्य हुए, सभी लोगों का उन्नत उज्जवल विचार था, अच्छे उत्तम कुल में पैदा हुए। पैदा होने के बाद में दूसरा सरल भाषी होना चाहिए, मृदुभाषी, कठोर नहीं होना चाहिए। बहुपात मृदुभाषी थे, ये अच्छा मृदुभाषी होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। चुलकाहट में क्रोध आ जाए, गुरु को भी लात मार दे या गुरु को छोड़ दे, त्याग करे, ऐसा शिष्य नहीं होना चाहिए। ऐसा शिष्य कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। उत्तम कुल में विनयी, मृदुभाषी, सहिष्णु, जितना भी कष्ट आए, कर्ण का जंग छेद दिया कीड़े ने तभी वो चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष इत्यादि सब छोड़ चुका हो, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य सब छोड़ चुका हो, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। संसार के क्लेशों को देखकर हमारा कल्याण कैसे होगा इसकी चिंता करके, हमारा परमार्थ कैसे होगा इसके लिए सदगुरु का आश्रय करने वाला है। स्त्री मर गई, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसे लोग भजन नहीं कर सकते। घर में माता पिता ने बदमाशी के वजह से मारपीट किया, वो भाग करके चले आए और मठ में आश्रय ले लिया, ऐसे लोग भजन नहीं करेंगे। समझ बुझ करके आने वाले परमार्थ के लिए, समझा जी ये संसार में कहीं सुख नहीं है, इसे कल्याण नहीं है, इसके घर में रहते हुए इस चीज को समझे, और समझने के बाद में सदगुरु के पास में आए। कैसे आए? समित पानी, समित पानी अपने हाथों में ले, वो तो गुरु का लक्षण हो गया ऊपर वाला, अभी नीचे वाला लक्षण है। समित पानी अपने हाथों में, समित समित माने संविधा, संविधा माने क्या, हृदय की सारी नाम प्रीति, प्रीति लेकर के आए गुरु के चरणों में और अपने को देखे, उनको सदगुरु की परीक्षा करे, एक महीना दो महीना एक वर्ष तक रहे गुरु के पास में, कहीं गुरु असत चरित्र तो नहीं है, गुरु कहीं अर्थ का लोभी तो नहीं है, गुरु भगवान के नाम में उसको प्रीति तो है, भजन करता है कि नहीं करता है, और हमारी सारी शंकाओं को दूर करने में समर्थ है कि नहीं, और परब्रह्म की अनुभूति संपन्न और संसार से विरक्त हो, ऐसे गुरु के पास में रह करके कुछ दिन ऐसे ही रहे, हरि नाम दीक्षा न ले, उनके आश्रम में सब सेवा करे और उनको भी बहुत निकट से परखे, सब कुछ चटाइए। ऐसा नहीं कि स्त्री ने पीठ में झाड़ू लगाई या घर में कोई भी स्वभाव होने के कारण घर वालों ने हमारा पत्याग कर दिया या मन नहीं लगा या अधिक सुख भोगने के लिए देखा ये मस्त तो बहुत अच्छा है, कुछ काम नहीं करना पड़ता, यहाँ रहेंगे तो हो जाएगा, बड़ा आराम से रहेंगे। ऐसे सब शिष्य नहीं है। इसलिए संसार से विरक्त होकर उत्तम कल्याण के लिए परमार्थ के लिए गुरु के समीप समझा लेकर के श्रद्धा लेकर के जाए। जब ये देख ले परख ले कि गुरु हमारी सब प्रकार के शंकाओं को दूर कर सकते हैं और हम जो चाहते हैं भगवत भक्ति इसको वो दे सकते हैं, परमार्थ दे सकते हैं, कहीं भी उनका चरित्र में दाग नहीं है, निर्मल है, अर्थ के प्रति लोभी नहीं है, मृदुभाषी हैं, सबका कल्याण की कामना करने वाले हैं, उनको देख ले और देख करके तब उनके चरण में अपने सिर को नतमस्तक करें, फिर उनसे दीक्षा हरिनाम इत्यादि लें। तभी यदि हमारा शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हमारा शरीर तस्वीर को काट देना पड़े लाख बार, तभी उस गुरु को हम नहीं छोड़ेंगे। ये सब उसमें दृढ़ता हो, हम लाख बार मरेंगे जिएंगे, किंतु ऐसे गुरु को हम छोड़ेंगे नहीं। उनकी आज्ञा का हम बिना विचार किए ही पालन करेंगे। यदि कुछ शंका उठती है तो हम उनसे पूछ लेंगे। मेरा आलस्य हो उसमें आलस्य नहीं हो। गुरु जी ने कहा कि देखो जरा वृंदावन से उस आदमी को बुला लाना, तो शिष्य ने उत्तर दिया यदि नहीं मिले तो मैं तो जा रहा हूँ, और अकेले में कैसे जाऊँ मैं तो जानता नहीं, और कैसे जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ कि बस से जाऊँ कि साइकिल से जाऊँ, कैसे जाऊँ, और उनका घर का रास्ता तो मैं जानता नहीं, कोई जाऊँ और भूल जाऊँ तो। ऐसे शिष्य शिष्य नहीं है। रूप सनातन जैसा शिष्य हो, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद जैसा, पहले गुरु को परखा और इसके बाद में गुरु जी ने अंगीकार नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, मर जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, जमीन पर सोएंगे, गोग्रास भोजन करेंगे, मर जाएंगे, किंतु आप ही से नहीं आने तो मरी जाए। ये सब शिष्य है। प्रभुपाद जी भक्ति गौरकिशोर दास बाजी महाराज को कभी छोड़ दिया, उनके प्रति कभी भी अश्रद्धा पैदा हुई, कभी नहीं हुई। ऐसा यदि हो तो ये सब शिष्य है। और भी यदि हम गुरु के पास रहते हैं तो और भी उनके यदि शिष्य हैं उनके प्रति श्रद्धा रहे, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा हो, उनके ही शिक्षा गुरु के रूप में हम मान करके आदर करें। यदि पांच शिष्य पांचों शिष्य से लड़ने लग गए तो गुरु जी के लिए समस्या पैदा कर देंगे, सबके विरुद्ध बगावत और सबके प्रति एक किसी से प्रेम नहीं, ये सत्शिष्य का लक्षण नहीं है। सत्शिष्य कभी भी दूसरे का दोष नहीं देखेगा, कभी नहीं देखे, अपना दोष देखे। प्रभुपाद जी ने कहा कि सहिष्णु बनकर के दूसरों का दोष ना देकर के अपने दोषों को खोज करो और उसे सुधार करने की चेष्टा करो। दूसरा क्या कर रहा है ऐसा मत देखो, तुम इस देखने के लिए भगवान ने तुमको नहीं भेजा, शासक नहीं बना करके भेजा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं दूसरों को शासन करूंगा, उनको मारूंगा, ये ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, हम इनको दुरुस्त कर देंगे, घर छोड़ करके इसके लिए आए ना, भजन करने के लिए आए, इन सब चीजों को विशेष रूप से सोच, शासन करने के लिए नहीं आए। तुम अपना भजन करो, गुरु की सेवा करो, और जो कर रहा है गुरु उसके लिए देखेगा सुनेगा करेगा, उसकी तुम समालोचना भी मत करो, कुछ भी मत करो, तुम अपना भजन करो यदि कल्याण चाहते। यदि सभी शिष्य ऐसे ही बन जाए तो तुम स्वर्ग वैकुंठ बन जाए, तो फिर कोई चीज की कानून की और ये नियम तियम कोई की आवश्यकता नहीं। इसलिए सहिष्णु हो, मधुर भाषी हो, अपने गुरु भाइयों के साथ में प्रेम पूर्वक रहे, उनका दोष न देखें, उनका दोष देखने वाला दूसरा है, दंड देने वाला दूसरा है। यदि किसी बात में शंका हुई तो उसके लिए परिप्रश्न करें, चैलेंजिंग उसमें नहीं। मैं तो सबसे पढ़ो तो पहले गुरु करने के समय में ये पहले देख लेना चाहिए परीक्षा, ये हमारा गुरु ठीक है, जो ठीक है तो शास्त्रों के मुताबिक हरि भक्ति विलास में और सब जगहों में जो लिखे हैं लक्षण उसके अनुसार में रह करके तुम सेवा करो। क्या लिखा है सुनो, सदवंश में पंच मैं, किंतु यदि चमार है तो सदवंश का ही चमार का ही सदवंश देखा जाएगा। जैसे हम थे ना रघुनाथ दास के, जिसके यहाँ जाते थे भोजन कर, कालिदास लाहिड़ी जाते थे, झाड़ू ठाकुर ये उत्तम वंश है। ऐसे ही विनीत, विनीत माने क्या, नम्र, नम्रता से बातचीत करें। प्रिय दर्शन जरा सुंदर सुकांत हो, ऐसा बातचीत करने में एकदम क्रोध से बातचीत करते हैं ये सब नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं ये सब नहीं है। बहुत अधिक बोलते हैं, बाबा डंबर दिन भर करते रहते हैं, बात नहीं कुछ नहीं है बस, ऐसा नहीं। परिमित रूप में बोले, जो जरूरत है उतना ही बोले, बेसी नहीं बोले, नहीं तो झगड़ा जरूर है। परिमित बात, ठीक, सत्यवादी जिसी को वो सत्य समझता है उसी को बोले, किंतु हो सकता है कि उसका सत्य गलत हो, वो गुरु विचार करेंगे। चलो सत्य बोले, झूठ ना बोले, गुरु जी से वैष्णव से किसी से भी झूठ ना बोले। शुद्ध आचार होने चाहिए, शुद्धाचारी माने क्या, सदाचार दो प्रकार के, एक स्त्री प्रसंग से दूर, या स्त्री भी हो तो पुरुष प्रसंग से दूर, और ठाकुर जी की रसोई बने आचार से, या ठाकुर जी की सेवा अर्चन हो सदाचार पूर्वक, भजन हो सदाचार पूर्वक, सब वैष्णव के लिए जो हरि भक्ति विलास इत्यादि में आचार दिखलाए गए हैं उसके अनुसार में आचार हो। ऐसा नहीं कि रसोई बन रही है और उसमें रसोई हो गए तो नमक उसमें डाल करके या मसाला वसाला वैसे ही डाल रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, उधर खड़ाम पहन करके वो चप्पल पहन करके रसोई बना रहे हैं, ये सब नहीं। पानी है तो पानी के घड़े में अपनी उंगली डाल दिया, नक से पानी छुआ हुआ कभी भी ठाकुर जी के भोग में नहीं लगता। आपने नमक दिया और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर दूसरी चीज में नमक दिया तो ईठो हो जाएगा, ईठो मैंने सकरी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। रसोई बनाने के पहले शुद्ध रहना चाहिए रसोई, जब भोग लग जाएगा तब उसमें स्पर्श का दोष नहीं आएगा या किसी चीज का दोष नहीं होगा। मैं देख लो कुछ रख ले, इस सब का विचार होना चाहिए। इसी रेखने कहां था, बुद्धिमान हो, गुरु जी के मन के भाव को समझ करके, वैष्णव के मनोभाव समझ करके वैसी सेवा करें, इसमें बुद्धिमान होना चाहिए। दम्भ, दम्भ इन माने अहंकार न हो, मैं बहुत जानता हूं, मैं बलिष्ठ हूं, 10-20 को मार डालूंगा यदि कोई ऐसा करेगा तो, यह सब दम्भ शरीर का बल। मैं बुद्धिमान हूं, बहुत शास्त्र पढ़ा हूं, किसी चीज का दम्भ नहीं होना चाहिए। काम भगवत भक्ति और गुरु सेवा के अतिरिक्त, वैष्णव सेवा के अतिरिक्त, भगवत भक्ति हो इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की कामना न हो। कामना यही हो जो गुरु जी को कैसे प्रसन्न करें, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, हमारी भक्ति कैसे उत्तरोत्तर बढ़े। गुरु भक्ति विशिष्ट, गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु जी के इच्छा अनुसार में मैं सब काम करूंगा, क्योंकि सदगुरु को सदगुरु नहीं बनाता है कि पहले ही उसने ठीक रखा है, सदगुरु का प्रदर्शक है इसलिए, और नहीं तो असदगुरु करने से ये सब जितनी चीजें हैं सब नष्ट हो जाएंगी। सदगुरु के बदले में असदगुरु करेंगे और असदगुरु को देकर के फिर दो दिन में असद्धा हो जाएगी, छोड़ करके चले जाएंगे या वही आपको हटा देगा। सब समय में सेवा में तत्पर रहने वाला हो, गुरु जी की के शयन के पश्चात में सोए और गुरु जी से पहले उठ जाए। गुरु यदि 3 बजे उठते हैं तो सेवक को कितने बजे उठना है? 2:30 बजे पहले प्रस्तुत हो जाओ, उनके बाद में जब उठेंगे भजन करेंगे उनकी सारी व्यवस्था करो और सारा दिन उनकी सेवा में तन्ना रहो। कहते हैं कि इतना नाम करना है करेंगे, शास्त्र पढ़ो और सब जितना जो कुछ कहेंगे हरि भजन करते तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए तुम करेगा किंतु हो जाएगी गुरु सेवा। यदि गुरु कहते हैं कि तुम 50,000-1,00,000 नाम करो तो ये गुरु का आज्ञा पालन हुआ तो ये गुरु को लाभ हुआ न शिष्य को लाभ हुआ? किसका हुआ? किसका हुआ जी? अरे तो तुम्हारे लिए हुआ है, 50,000 नाम किया गुरु जी के लिए, उन्होंने आदेश दिया। किसके लिए किया? तुम्हारे लिए। गुरु जी ने कहा ठाकुर जी का मंदिर में जाकर के स्नान करके पवित्र होकर के इनका अर्चन करना। गुरु जी को उससे लाभ क्या हुआ? अरे तुम्हारा जो कल्याण है, इसलिए गुरु जी की सेवा नाम हो जाता है किंतु होती है तुम्हारे ही, तुम्हारा ही कल्याण होता है। तो इस तरह से गुरु जी से पहले उठे, गुरु जी से पीछे सोए, जैसा कहते हैं वैसा आचरण करें, तन मन वचन सब प्रकार से उनकी सेवा करें। यदि जो चाहते हैं, क्या चाहेंगे? तुम्हारे लिए भजन के लिए उत्तम उन्नति के लिए कुछ कहेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, ये सब करो। यदि गुरु जी का तुम पैर दबा रहे हो तो तुम वो गुरु जी की तुम क्या कर रहे हो ये समझो। उससे तुम एक बहुत बड़ी चीज लेना चाहता है, पैर दबाएगा साधारण चीज, और तुम चाहते हो उसके बदले में क्या चाहता है? कृष्ण प्रेम चाहता है, तो ये समझो। इसलिए अपने लिए स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कहेंगे। लोगों के समझ में नहीं आए, नहीं आता इसके बाद में। अच्छा, यदि गुरु किसी को प्यार करते हैं ना, उसको आदर देते हैं तो तुम जरूर उसको प्यार करो, आदर करो, अन्यथा विरोध होगा गुरु में। तुमने क्या कहा? यदि गुरु किसी को स्नेह करते हैं तो तुम भी क्या करो, उसके प्रति प्रति प्यार रखो। गुरु जी ने कहा जैसे वो आए हैं थोड़ा सा तंबाकू उनके लिए चढ़ा देना तो और उनको दे आना, तो कहे ये हमसे नहीं होगा, हम फिल्म चलाने के लिए नहीं आए हैं। ऐसा नहीं, जो कहते हैं वो करो, क्योंकि सदगुरु हैं। प्रभुपाद जी ने एक बड़े राज्य के स्टेट के दीवान थे, दीवान माने मंत्री, प्रभुपाद के पास में हरि कथा सुनने के लिए आए। उनका नाम मुझे राम भूल गया हूँ। तो वो आए, बहुत स्टेट के मालिक प्रधानमंत्री, वो गुड़गुड़ी पीते थे। तो प्रभुपाद उनको हरि कथा कर रहे हैं और उनको चाहिए 15-15 मिनट में गुड़गुड़ी पीना। उन्होंने परमानंद को कहा, देखा जैसे ये बार बार उठते हैं जाते हैं तो समझ गए, कहे गुड़गुड़ी यहीं ला करके उनका बना करके और इनको दे जाना, तो ये उठे नहीं, हरि कथा सुन। परमानंद जी ने ऐसा ही कोई भी कुछ घर नहीं किया, लेकर के वहीं पर कहा जैसे ही है, बड़े लज्जित हो कहा जैसे उठा करके फेंक दिया, वो टूट गया और जीवन में कभी नहीं। ये सब विचार रखना चाहिए, ये मत विचार कर जो गुरु क्या था, गुरु तुमसे अधिक विचारवान है, बहुत विचार परमार्थ देखते हैं। तुम लोग देखा गया संसार का नियम तियम, इसका कोई मतलब नहीं है। दो चीज है, एक है प्रीति और एक है वैराग्य। हम अशुभ काम नहीं करते हैं ठीक है, हमें संसार से वैराग्य है। इतना होने पर भी यदि कृष्ण के प्रति गुरु के प्रति प्रेम प्रीति नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हमको चाहिए क्या? गुरु जी के प्रति प्रीति चाहिए, भगवान के प्रति प्रीति ऐसी चाहिए कि नाम ले लेते लेते चित्त द्रवित हो जाए। यदि हमने वैराग्य के लिए ही सारा जीवन नष्ट किया और ये चीजें नहीं, अफर्मेटिव चीजें नहीं हुई, सकारात्मक चीजें नहीं हुई और वैराग्य हो गया, हम रूखा सूखा खा करके जीवन निर्वाह करते हैं, इस सब तो क्या हुआ, तत्व ज्ञान हो गया है। किंतु प्रीति जो थोड़ी सी एक चीज है, ये प्रीति गुरु के प्रति नहीं हुई, वैष्णव के प्रति प्रीति नहीं, शास्त्र के प्रति प्रीति नहीं, भगवान के प्रति प्रीति नहीं, तो इसका मूल्य क्या है? क्या मूल्य? बेकार। उस विद्या का, उस वैराग्य का, उस तत्व ज्ञान का कुछ भी मतलब नहीं। एक आदमी कुछ नहीं जानता, उसको न तो वैराग्य है न कुछ है, और श्रीरंगम में जैसे वो ब्राह्मण गीता पाठ करते हुए रोता था, महाप्रभु जी ने कहा कि गीता पढ़ते तो रोते क्यों हो, तो वो उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाता था, अनुसार विचार का उच्चारण भी नहीं था। उसने कहा कि जब मैं गीता खोलता हूँ तो देखता हूँ कि कृष्ण जी रथ पर खड़े हैं और अर्जुन विषाक्त विषण होकर के बैठे हुए हैं धनुष बाण छोड़कर, और कृष्ण उनको मुस्कुराते हुए उपदेश दे रहे हैं। ये देख करके मेरा चित्त गदगद हो जाता है, आंख से आंसू आने, मैं रोता नहीं हूँ किंतु हो जाता। एक बहुत बड़ा भारी विद्वान तत्वज्ञानी संस्कृत का विद्वान भी, भक्त भी हो, आचरण करने वाले, उसके सामने लगेंगे। इसलिए हमको जरूरत है प्रेम की, श्रद्धा की, ये इसके लिए हमको देखना चाहिए। साधारण लोग इस चीज को नहीं देख पाते, देखते हैं कि ये कैसे हैं, अरे भारी विद्वान है कि नहीं, बैरागी है कि नहीं, लंगोटी का उदाहरण करते हैं, मरकत बैराग्य हो सकता है। इसलिए यह सब प्रेम के प्रति यदि उसका लक्ष्य हो तो वो सब शिष्य है। और बोलो, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मैंने क्या, उसकी इंद्रियां अपने अधिकार में हो, और किसी ने कुछ कहा क्रोध आ गया बस लड़ पड़े, नहीं, मन को ऐसे कंट्रोल में रखो जब जब क्रोध की जरूरत है तो क्रोध हो नारद की भांति, और एक सेकंड में उसको दमन कर सके। अपने समस्त इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, कोई चीज अच्छी आई सामने, वाह, बस दौड़ करके उसको भगवान का भोग लगा, नहीं लगा दौड़ करके खा लिया, या चुरा करके रख दिया पीछे खाया, इंद्रियां उसकी संयम नहीं। इंद्रियां वशीभूत होनी चाहिए सभी, आंख की इंद्रिय, कान की इंद्रिय, जीवा की, और जितनी भी इंद्रियां हैं सब ठीक होना चाहिए। जितेंद्रिय व्यक्ति हो तब वो सब चीज सोच सकता है, नहीं तो गुरु की सेवा के लिए गुरु जी कुछ अस्वस्थ अभिनय करने लगे तो हम जाकर के क्या करेंगे, सेवाई में रुचि नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, और जब गुरु में श्रद्धा नहीं होगी, ईश्वरपुरी पाद की भांति माधवेंद्रपुरी में तो रामचंद्र की खांसी दशा होगी, रामचंद्रपुरी की, और गुरु जी बाहर कर देंगे, उसे स्नेह नहीं करेंगे। चलो, जड़ वस्तुओं में ममता ही, जड़ वस्तुओं में, जड़ वस्तु को इसको इस रूप में लिखो, देखो, भगवत भक्ति के काम में नहीं आने वाली विरोधी वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहे। भगवत सेवा के अतिरिक्त और जो दूसरी वस्तुएं हैं उसमें अनासक्त रहे। चलो, सभी वस्तु में आसक्ति हो, आलस्य रहित हो, आलस्य नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अच्छा अब उठेंगे, अब उठेंगे, अब हरिनाम करेंगे, अब हरिनाम करेंगे, और होता नहीं, दो चार माला फिर लिया फिर बस। कोई भी व्यक्ति गृहस्थ में रहे, त्यागी रहे, उसको किसी न किसी प्रकार से दो तीन घंटे का समय मिल जाएगा, इसमें 16,000 25,000 या 1,00,000 नाम करने के लिए सहज ही उसको समय मिल जाता है, इसलिए उसको आलस्य नहीं करना है किसी भी काम में। जो आज करना है वो उसको, मैंने आज करना है उसे अब कर लो, कल के लिए मत छोड़ो। नियम में शिथिलता मत लगाओ, जितना हम कर रहे हैं 50,000 कर रहे हैं, 75,000 कर रहे हैं, 1,00,000, ये हमको करना है किसी भी प्रकार से, और काम खाना पीना और का समय हम रख लेंगे, किंतु इसको जरूर करना है जितना हमने नियम किया। बड़े प्रीति के साथ में चित्त चंचल न रहे, तत्व की जिज्ञासा करने की भाव, तत्व की, कृष्ण क्या तत्व है, भक्ति क्या तत्व है, माया क्या तत्व है, जीव तत्व क्या है, ये सब के लिए जिज्ञासा। मेरी जिज्ञासा होगी पूछना, पूछेंगे हम गुरु से परिप्रश्न के माध्यम से।
गुरु के
गुरु में दृढ़ मित्रता विशिष्ट। गुरु जी को प्रणाम कर लिया और जब जा रहे हैं तो एक माइल दूर से उधर से देख करके बस प्रणाम करके चले गए, ऐसा नहीं। विश्वम नहीं गौ सेवा, गुरु जैसा हितकारी हमारे विश्व में कोई भी नहीं है, इस चीज को समझो। सबसे विश्व ब्रह्मांड में हमारे हितैषी है तो कौन है? कृष्ण भी पीछे हैं। पकड़ करके लाने वाले परमार्थ में कौन लिया? गुरुदेव। इसलिए उनके प्रति दृढ़ प्रीति युक्त सेवा। कितना सारे साथ लग गया, तो इस तरह से समझो ये योग्यता। ऐसा शिष्य यदि होगा तो गुरु की सेवा करके उनके उपदेशों से उनके आचरण से बहुत जल्दी परमार्थ को प्राप्त कर लेगा। और जो लोग ऐसे नहीं हैं वो परमार्थ उनको लाभ नहीं होगा, कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन के बाद में चले जाएंगे, फिर संसार में जाएंगे, फिर न जाने क्या होगा। इसलिए इन सब चीजों को उपदेशों को पालन करके गुरु जी के विचारों को समझो ये क्या चाहते हैं और तब भजन करो। आज यहीं तक रहे वंशा कल्पतरु भक्त कृपा सिंधु।